माना के आजकल रूठा वक्त है, जिंदगी का सफर थोड़ा सख्त है, रुका हुआ है इस जहां का कारवां, ये रात जाएगी गुजर तू देखना, धूप है खिड़कियों पे इसे आने दे, अंधेरे है किस काम के तू इन्हें जाने दे, धूप है खिड़कियों पे इसे आने दे, अंधेरे है किस काम के तू इन्हें जाने दे।
ओम शांति। आज 45 इस सीरीज का जो 45 नंबर का टॉपिक है रूहानियत, गुण और अवगुण की दूपशाओं। हर एक मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की यात्राएं निरंतर चलती रहती हैं, एक रूहानी दूसरा जिस्मानी। एक होती है रूहानी अर्थात जिसको भक्ति में कहें धार्मिक, और दूसरा सांसारिक। यहाँ इस ब्राह्मण जीवन में भी आध्यात्मिक अर्थात रूहानी यात्रा, रूहानी सफर चलता रहता है, और साथ में बाबा कहते हैं गर्गस्थ में रहते भी तोड़ने वाला है। तो रूहानियत किसे कहेंगे? जो भी रूह की शक्तियां हैं, गुण हैं, उसके मूल्य हैं, वो जब हमारे जीवन से परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, और उनके अनुकूल हम उन्हें आचरण में लाते हैं, बल्कि आचरण में लाने के साथ साथ दूसरों को भी उसको उसकी अनुभूति होती है। जैसे संडे के मूल्य में बाबा ने कहा था कि जो भाग्यवान बच्चे होते हैं उनके दृष्टि से रूहानियत दिखाई देगी, रूहानियत का अनुभव कराएंगे, रूहानी बाप का अनुभव कराएंगे और परमात्म याद की याद दिलाएंगे, उनको देखने से स्मृति आएगी। जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग की आउटलुक देखकर पता चलता है इस बिल्डिंग के अंदर रहने वाला मालिक कैसा है, उस बिल्डिंग की जो शोभा है, उसका जो रूप रंग है, उसको देख के पता चलता है कि अंदर रहने वाले लोग कैसे हैं। इसी तरह से ये हम सबको एक बिल्डिंग मिली हुई है और इसमें रहने वाले लोग भी बहुत हैं, हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो भी एक इस बिल्डिंग के अंदर ही रहती हैं, अनुभव करती हैं, और उनका मालिक आत्मा है। तो आत्मा का जो आचरण है इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से दिखाई देता है, उनका पूरा प्रभाव पूरा असर हमारी कर्मेंद्रियों से दिखाई देता है। तो रूहानियत जो है वो ब्राह्मण जीवन का एक विशेष हिस्सा है, अंग है। जैसे हम सबको ब्राह्मण जीवन मिलता है, हम ब्राह्मण जन्म में आते हैं, तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन के आधार पर ही हम जीवन में उसका अनुभव करते हैं, चाहे हमारा उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है। और जब हम अटेंशन रखते हैं तो हम इस स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का पूरा फायदा ले सकते हैं। और वास्तव में आध्यात्मिकता तो आत्मा का स्वधर्म है, क्योंकि पूरे कल्प में जो आत्मा इस रूहानी सफर में आई है, तो इस रूहानी सफर में आध्यात्मिकता जो है वो लगभग हर व्यक्ति के जीवन में रहती है, चाहे वो कितना भी नास्तिक क्यों ना हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी भी मोड़ पर उसके मुख से परमात्मा के प्रति, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, कुछ भी कहो, कुछ तो उसके मन में भावनाएं, संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि आत्माएं जब अपने घर से आती हैं तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो वहाँ की रिकॉर्डिंग उसके अंदर तो होके आती है। जैसे जितने भी मधुबन में आते हैं घर से बाबा से मिलने या भट्टी के लिए, तो उस घर का प्रभाव तो उनके उस चेहरे पर, मन पर पूरा रहता ही है। संडे के मुरली बाबा ने कहा था, स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। जो कहा था, अमृत वेले सीधा ऊपर ही आ जाओ, मेरे साथ ही आकर बैठ जाओ, ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे ते ऊंची स्थिति का अनुभव करो। इसी तरह रूहानियत जो है वो परसेंटेज के रूप में हमारे जीवन में निरंतर चलती रहती है। जितना हम उस स्मृति में रहते हैं, उस स्मृति के अनुपात से ही हम उसकी महसूसता ना केवल खुद करते हैं, बल्कि दूसरे भी उसकी महसूसता करते हैं कि हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी कितनी है, रूहानियत कितनी है, हमने कहाँ तक उस ज्ञान को आत्मसात किया है। तो दो चीजें, एक रूहानी सफर है, एक है जिस्मानी सफर। रूहानियत अर्थात जो हमारी देही अभिमानी स्थिति है, जो आजी बाबा ने कहा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, अर्थात बच्चे देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर बैठे हैं। और दूसरा सांसारिक यात्रा, जो हम सब उसके भुक्तभोगी हैं, अर्थात देह अभिमान की यात्रा है वो। और देह अभिमान की यात्रा के क्या परिणाम हैं, हम सब उनसे निकल चुके हैं। देह अभिमान से हमने कितना दुख भोगा है, कितना नुकसान हुआ है, कैसे हम भगवान से विमुख हुए हैं, कैसे हमारा पतन होता आया है। तो सांसारिक यात्रा और रूहानी यात्रा ये हर एक के जीवन में चलती रहती है। लेकिन ऐसा ना हो हम इस ब्राह्मण लाइफ में भी उस सांसारिक यात्रा की जो हमारी परसेंटेज है वो बढ़ती ना रहे, बल्कि कम होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात हम देखेंगे रूहानियत में, हमारी रूहानियत कहाँ कम होती है। जब हम रिलेशन में, संबंधों में श्रीमत के अनुसार उसको आचरण में नहीं लाते हैं। भले हम इस अलौकिक दुनिया में आ गए हैं, लेकिन अलौकिक दुनिया में आकर जो लौकिक रिश्ते नाते हैं, अलौकिक संबंध हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी बुद्धि में किसी न किसी तरीके से घूमते रहते हैं, चाहे वो स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से। क्योंकि ये रूहानी यात्रा अर्थात एक गुप्त यात्रा है, दिखाई देने वाली नहीं है। लेकिन आत्मा को लंबे समय से अभ्यास पड़ा है, जो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है उसके प्रति वो अटैचमेंट, आकर्षण, लगाव, और फिर धीरे धीरे वो उसके अधीन हो जाती है। लेकिन ये सब गुप्त यात्रा है, रूहानी यात्रा। इसलिए बाबा कहते हैं ये रूहानी गुप्त पुरुषार्थ है, इस रूहानी यात्रा में गुप्त पुरुषार्थ है, ये दिखाई नहीं देता है। और जो चीज़ दिखाई नहीं देती है उसको प्राप्त करने के लिए लंबे समय की साधना की जरूरत पड़ती है। बिना साधना के इस रूहानी यात्रा का सुख नहीं लिया जा सकता है, उसका अनुभव महसूस तो नहीं की जा सकती है। तो लंबे समय तक जब तक हम सोल कॉन्शियस की स्थिति में नहीं रहते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति में, तब तक रूहानियत हमारे अंदर से बाहर नहीं आएगी वो। क्योंकि अंदर के साधनों से हमको बहुत अटैचमेंट हो गई है। कौन कौन से? जो हमारी भौतिकता का संसार हमने जो अपने अंदर बसा कर रखा है, चाहे वो साधनों के रूप में है, चाहे वो व्यक्तियों के आकर्षण का है, अटैचमेंट है जी, फैशन है, चाहे वो हमारे ऐसे विचारों से लगाव है जिन विचारों को हम छोड़ना नहीं चाहते, संकल्पों को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि देह अभिमान के संकल्पों से भी आत्मा को जैसे सुख की अनुभूति करने की आदत पड़ गई है, तो उन संकल्पों के सीमा रेखा से हम जैसे बाहर नहीं आना चाहते हैं। जबकि रूहानियत तो हमारे जीवन में तभी आएगी जब हम पुराने संकल्पों से, पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से बाहर निकलेंगे, तो तभी हम उससे आजाद हो पाएंगे। तो सबसे पहले है सोल कॉन्शियस स्थिति, जितनी हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी उतना हमारे जीवन में रूहानियत भी बढ़ती जाएगी, और रूहानियत बढ़ेगी उसके आधार पर हमारे जीवन की प्रगति भी होती जाएगी। इस ब्राह्मण पथ पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमेशा हम उत्साह में रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे। और जिसने रूहानियत का एक बार स्वाद चख लिया उसको संसार का कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता है, चाहे जितने भी लुभावने आकर्षण आए, लेकिन रूहानियत के स्वाद के आगे संसार के सभी स्वाद फीके हैं। सभी ने इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव किया होगा, जैसे ब्राह्मण जीवन हमको नया जन्म मिलता है तो कितना नशा चढ़ जाता है, और उस नशे का परिणाम होता है कि चाहे व्यक्ति का है या लौकिक परिवार का है, साधन का है, सब आकर्षणों को ठोकर मार देते हैं एक सेकंड में, कुछ नहीं देखते उस समय, ना उस समय हम संबंधों, लौकिक संबंधों को देखते हैं, ना उस समय समाज को देखते हैं, क्योंकि इस रूहानियत भरे जीवन में जो अनुभूति होती है, एक सेकंड की भले वो अनुभूति हो, लेकिन वो एक सेकंड की अनुभूति संसार के सारे सुखों को फीका कर देती है। और फिर हमें कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर पाता है, नहीं तो संसार के आकर्षण तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, उस लकड़हारे की तरह जो एक लकड़हारा लकड़ियां काटता है, अपना गुजर बसर करता है, परिवार की आजीविका चलाता है, लेकिन वो लकड़ियां काटते काटते थक भी जाता है, फिर उसको एक आदमी मिलता है तो कहता है इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है तुमको, थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहां एक लोहे की खान है, आप वहां से थोड़ा लोहा इकट्ठा करेंगे तो आप हफ्ते भर बैठ के खाते रहेंगे, फिर बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे जाता है, लोहा मिलता है उसको, तो उसका एक महीना निकल जाता है आराम से, इतना लोहा ले आता है एक बार में। फिर वो आदमी देखता रहता है उसको लकड़हारे को, तो बोला अभी और थोड़ा आगे बढ़ो, इस पर रुक नहीं जाओ आप, आगे कुछ और मिलेगा आपको, आगे चांदी मिलेगी। फिर भी उसको विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब बोला तो रिसर्च करता है, आगे जाके देखता तो चांदी की खदान है, चांदी लेकर आता है। फिर उसके 5-6 महीने निकल जाते हैं, तो ये यात्रा उसकी चलती रहती है लोहे से चांदी की ओर। उसी तरह से फिर आगे, फिर और कुछ उसको सोने की खान होती है, तो उसके लिए वो आदमी कहता है आगे जाओ सोने की खान मिलेगी, वो साधु के रूप में जो आदमी होता है, तो उसको सोना भी मिलता है। अब सोना ले जाता तो उसका 1.5 साल वैसे निकल जाता है, तो चलता रहता है कई सालों तक ये यात्रा। फिर वो साधु कहता है और आगे जाओ और आपको आगे हीरे की खान मिलेगी, तो बोलता है अगर हीरे की खान है तो साधु क्या करता है, क्यों नहीं लेके आता है, मुझे क्यों भेज रहा है। तो वास्तव में वो जाता आगे, हीरे की खान भी मिलती है। तो फिर वो पूछता है आखिर आपने ये हीरे क्यों नहीं लिए, तो उसकी आंखों में देखता है वो व्यक्ति लकड़हारा, वो उस साधु की आंखों में देखता है कि जो इसको प्राप्ति हुई है ना, वो इस ये उसकी उस प्राप्ति के आगे ये हीरे सोने चांदी कुछ भी नहीं है, उसके आगे खाई है इसलिए आगे जाता नहीं है। ठीक बोला, वास्तव में जब ये संसार के सभी आकर्षण हम एकत्रित कर लेते हैं और लास्ट में क्या मिलता है हमको, कुछ नहीं मिलता है। बाबा ने कल कहा था ना, खड्डे में गिर पड़ते हो जाके, क्योंकि ये संसार के सभी आकर्षण समस्याएं परेशानियां मुसीबतें पैदा करने के लिए हैं। 1970 की मुरली है, अविनाशी आत्मा की प्यास विनाशी साधन पूरा कर नहीं सकते, अविनाशी आत्मा की प्यास विनाशी साधन बुझा नहीं सकते। तो इस संसार के जितने भी आकर्षण हैं वो हमारी रूहानियत को नष्ट करने वाले हैं, बाबा कहते हैं यूज़ करो, लेकिन ट्रस्ट इवन कर यूज़ करो, उनमें हमारा उतना अटैचमेंट ना हो, उनके हम अधीन ना हो जाए, बस ना हो जाए। इसलिए हमको कदम कदम पर बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले रूहानियत की अगर हमको गहरी अनुभूति करनी है तो सोल कॉन्शियस स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मुख्य मूल बात एक ही है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ही भूल जाते हैं, और आत्मा को भूले माना बॉडी कॉन्शियस में आ गए, और बॉडी कॉन्शियस वो तो हम लंबे समय से उसके परिणाम हम देख रहे हैं। तो बॉडी कॉन्शियस में आने के कारण फिर हमारी अवनति शुरू हो जाती है, अनेक प्रकार के आकर्षणों में आत्मा आकर्षित हो जाती है, और उन आकर्षणों में परिणाम भी जल्दी मिलता है, देह अभिमान के आकर्षणों में, क्योंकि सारा प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई दे रहा है। लेकिन जो रूहानियत के स्रोत हैं, जो साधन हैं, वो तो सारे सूक्ष्म हैं। तो पहली सोल कॉन्शियस स्थिति लंबे समय तक हमको, क्योंकि सब दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, ये तो गुप्त है, तो अंदर ही अंदर हमारी आत्मिक साधना, आत्मिक दृष्टिवृत्ति जो है निरंतर बढ़ती रहे। 5 दिन पहले मुरली थी एक, कि जो बच्चे शरीरीपन का अभ्यास करते हैं उनके लिए बाबा ने 5 बातें बताई थी कि स्वतः होती हैं वो। हाँ, सबसे पहली बात थी उनकी कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी, दूसरी बात थी नाम रूप में वो कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि देह अभिमान हमको नाम रूप में फंसाता है। जब हम सोल कॉन्शियस की स्थिति में हैं तो हम नाम रूप से ऊपर ही निकल जाते हैं, क्योंकि तीसरी बात जो बताई थी बाबा ने कि भाई भाई की वृत्ति बनी रहती है, और जहाँ भाई भाई की वृत्ति बनी रहेगी वहाँ किसी प्रकार का भी किसी के प्रति कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं होगा, तो भाई भाई की वृत्ति बनी रहेगी। और चौथी, देह का अभिमान टूटता जाएगा। और 5वीं, निरंतर बाप की स्मृति रहेगी। तो ये तो बाबा ने केवल 5 निशानियां बताई थी केवल अशरीरी अर्थात सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने की। तो हमारा तो वास्तव में फाउंडेशन है रूहानियत में रहने का, सोल कॉन्शियस स्थिति। दूसरी बात है रूहानियत को और गहराई से महसूस करने के लिए या अपने जीवन में लाने के लिए सुप्रीम सोल कॉन्शियस स्थिति, परमात्म स्मृति, अर्थात जो हमको मिला है उसे, अपने भाग्य की स्मृतियां। संडे की मुरली में था ना, भाग्यवान बच्चों के भाग्य की लिस्ट, अमृत वेले से रात्रि तक क्या क्या हमको भगवान ने दिया है, अमृत वेले कौन उठाता है, कौन हमको आवाज़ देता है, कौन हमारी नींद को पूरा कर देता है, उस समय क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं में उसको विस्मृत कर देते हैं तो भी रूहानियत की बजाय संसार के आकर्षण हमको आकर्षित करने लगते हैं। मेडिटेशन में, साधना में, या राजयोग में, या याद की यात्रा में अगर हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसका एकमात्र कारण यह है कि कहीं ना कहीं किसी आकर्षण में हम फंसे हुए हैं, या कोई एम्बिशियस, कोई इच्छाएं हैं, कोई मान शान की इच्छा हो सकती है, कोई चीजों को प्राप्त करने की इच्छा हो सकती है। तो सूक्ष्म इच्छाएं भी हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, और वो इच्छाएं जो हमको ही मालूम है, बाहर से हम भले बहुत अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन जो हमारी आंतरिक दुनिया है, आंतरिक जगत है, उसके अंदर हमारे क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, मान शान की इच्छा है, हद की कामनाएं हैं, या कोई चीज़ों को, साधनों को एकत्रित करने की आदत है, या कोई हमारी महिमा करे, कोई प्रशंसा करे उसकी है, या किसी की नेगेटिव बातों को हमने पकड़ के रखा हुआ है वो छूटती नहीं है, फुल स्टॉप लगाया नहीं है। सूत्र तो हमको बहुत मिलते हैं, युक्तियां तो बाबा कहते बहुत मिलती हैं, लेकिन उन युक्तियों को अप्लाई करने के लिए जब हम अटेंशन नहीं रखते हैं तो अटेंशन टेंशन में बदल जाती है। बाबा ने कहा ना उस दिन बच्चे अटेंशन रखते रखते कई टेंशन में चले जाते हैं, इतना ज़्यादा पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन रखते हैं। तो ये जो मार्ग है, इस मार्ग में हमको पुरुषार्थ की गतिशीलता बनाए रखने के लिए स्वयं के ऊपर ही निगाह रखने की जरूरत है। तो दूसरी बात है सुप्रीम सोल कॉन्शियस, अर्थात निरंतर हमको स्मृति रहे कि हमको भगवान से क्या क्या मिला है, उसका दामन हमने क्यों पकड़ा है, उसकी हम गोद में क्यों आए हैं, क्यों भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, क्यों हमने अपना लिबास बदल लिया, अपना पहनावा बदल लिया, अपना रहन सहन सारा बदल दिया, क्यों हम अपने संकल्पों को परिवर्तन करने के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विस्मृतियां हो जाती हैं, और वो विस्मृतियां हमारे पुरुषार्थ का बाधक बन जाती हैं। तो सुप्रीम सोल कॉन्शियस अर्थात हमारा निरंतर उससे किसी न किसी रूप से संबंध जुटा रहे, रिलेशन में दरारें न पड़े। संसार में भी अगर रिलेशन में दरारें पड़ती तो क्या होता है, और दरारें पड़ने का कारण क्या होता है, अपनी ही कमी कमजोरियां, क्योंकि हम झुकना नहीं चाहते हैं। पति पत्नी में अगर तलाक होता है, डाइवोर्स का कारण क्या है, कोई झुकता नहीं है, क्योंकि अहम है, अहम छूटता नहीं है, सहज रूप से नहीं है। तो सूक्ष्म रूप से अगर हमारे अंदर अहंकार है, अहम है, तो वो हमारा ही हमारे लिए बहुत घातक है। दूसरे का नुकसान नहीं होगा उससे, वो तो ऊपर जाएगा उसी से, छोड़ देगा उसको। लेकिन जब हम खुद ही उसको पकड़ कर रख लेते हैं और महसूस नहीं करते हैं, अगर हमको सामने वाला थोड़ा इशारा देता है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमारे लिए ही घातक है, चाहे वो किसी ना किसी रूप में उस समय हम एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जिसने अगर अपने ऊपर अटेंशन रखा है तो वो एक्सेप्ट करके अपने आप को उससे निकाल देगा। तो क्योंकि सुप्रीम सोल कॉन्शियस के साथ हमारा संबंध है, सुप्रीम सोल के साथ हमारा संबंध है, तो जब वो कॉन्शियस बनी रहेगी तो निरंतर उसकी ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, क्योंकि हमने रियलाइज किया अपनी कमी कमजोरियों को। तो दूसरी बात है, सुप्रीम सोल कॉन्शियस की स्थिति हमको निरंतर बनाकर रखने की एक आदत डालनी है, और ये आदत का निर्माण हमको खुद ही करना है, क्योंकि सभी की सिचुएशन अलग अलग होती है। और तीसरी बात है, रूहानियत की अगर हमको महसूसता करनी है, जीवन में बढ़ाना है, तो है वो है साइलेंस, मौन। वास्तव में मौन रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब भी हम समन संपर्क में आते हैं तो जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड स्पीच, ना पे तुले बोल, हाँ जी, हाँ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, वो तो है ही हमारे जीवन में, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन साथ में कंट्रोल्ड स्पीच, जो कि हमको सीखने के लिए मिलती है, कई दफा हमारे मुख से ऐसे वैसे बोल निकल जाते हैं जितना जिनका कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कल था ना, ना ज़्यादा फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। अब एक ही सेंटेंस है तो सारे दिन में हम फालतू कितना बोलते होंगे। एक है मुख से बोलना, दूसरा है मन से भी बोलते रहते हैं, अपने आप से बोल रहे हैं, अपने आप को ही कोसते रहते हैं, अपनी पास की जो हिस्ट्री है उसको ही खंगालते रहते हैं, या दूसरों की हिस्ट्री को खंगालते रहते हैं, या दूसरों को देखने से ही हमारे जीवन में विचारों का जैसे तूफान उमड़ता रहता है, और उसमें हमारी सारी रूहानियत ध्वस्त हो जाती, नष्ट हो जाती है, और फिर से निर्माण करना पड़ता है। और फिर से अगर उस बिल्डिंग को तैयार करना है तो मेहनत लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलते रहो, अटेंशन, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो तीसरी बात है साइलेंस, साइलेंस अर्थात मौन की अवस्था। तो हमको देखना है कि हम कितना अपने मन को संसार के उन विचारों से मौन रखते हैं जो विचार हमारे लिए घातक हैं, जो विध्वंसक है हमारे लिए, तो ये देखना है। चौथी बात है सॉलिट्यूड अर्थात एकांत। जितना हम एकांत में जाते हैं उतना हम स्वयं का निरीक्षण कर पाते हैं बड़ी गहराई से। अगर हम संगठन में तो रहते ही रहते हैं, लेकिन संगठन के अतिरिक्त भी हमको अपने लिए एकांत का समय अवश्य निकालना है। अगर हम घरों में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, लेकिन फिर घर में छत की, घर की छत तो खाली है, थोड़ी देर छत पर ही चले जाओ, क्योंकि शहरों में जो व्यक्ति रहता है वो कहाँ जाएगा बेचारा एकांत में, उसको तो पहाड़ नदियाँ नाले दिखेंगे नहीं उस समय, जिसके लिए हाँ जिक्र करते हैं क्लासों में, तो हाँ जी, हाँ टीवी में देख ले। तो वास्तव में उसके लिए छत बहुत अच्छी है। तो घरों में छत तो होती है, थोड़ा देर चले जाओ, आधा घंटा छत के ऊपर ही, सवेरे शाम जब भी मौका मिले, अमृत वेले तो सबको मिला हुआ है। कहीं कहीं छत भी नहीं होती तो गलियाँ होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस एकांत का अनुभव जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितना हम एकांत में जाएंगे तो हमें अपनी कमी कमजोरियाँ हमारी पकड़ में आएंगी, नहीं तो अंदर में ही कई तरह के विचार जो हैं घमासान करते रहते हैं, और कई तरह के जो दृश्य हैं हमारे अंदर जो रिकॉर्डिंग है लंबे समय से हैं, ना केवल इस जन्म से बल्कि अनेक जन्मों जन्मों के हैं, वो ही हमको उद्वेलित करते रहते हैं, वो ही अंदर आंदोलन करते रहते हैं, वो ही हमारे चित्त को, हाँ जी, चित्त, वही हमारे चित्त को अशांत करते रहते हैं। तो एकांत में जाने से हमको रियलाइज होता है कि मेरे अंदर अभी क्या क्या कमजोरी है, क्यों हम बार बार उन चीज़ों के धोखे में आ रहे हैं, क्यों डिसेप्शन है अपने साथी में क्यों धोखा करें, क्यों हम अपने आप को ठग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन नहीं है हमारे जीवन में, वो रूहानियत नहीं बढ़ रही है। अगर रूहानियत का थोड़ा भी स्वाद आ जाएगा तो कमियों को छोड़ने के लिए टाइम नहीं लगेगा, वो तुरंत निकल जाएंगी। जैसे बताया ना बचपन में, ज्ञान के बचपन में कैसे एकदम तुरंत कितना फास्ट परिवर्तन हो गया हर एक के जीवन में। बचपन में जो स्टार्टिंग में 2-3-4 साल होते हैं, कितना फास्ट परिवर्तन होता है, उड़ती कला का अनुभव होता है। वो तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ही हमारे साथ योग लगा रहा है। हाँ, उसमें इतना दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि बस अभी संपन्न बने के बने, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो अग्निपथ है, इस पर कांटे ही कांटे है, लास्ट सो फास्ट जाने वाले हैं। और वो महसूस भी होता है उस समय। 2 साल का रक्षा 14 साल गए, जो आपने बात बताई। तो हम जब 99 में मधुबन में आए थे कुमार भट्टी में, तो उसमें मुरली चली थी। बाबा ने कहा था 6 मास में बापसमान संपन्न बनना है, बापसमान संपन्न बनना। तो हमने डायरी पर लिख दिया कि 6 मास में संपन्न बनकर दिखाएंगे। फिर 6 मास कहाँ, कितने साल बीत गए, गेम गिफ्ट देंगे 6 महीने बाद। तो वो ये चीज़ है कि वो नशा तो सबके, वो उसमें रूहानियत कैसे ऑटोमेटिकली आती है, कैसे हम व्यर्थ से किनारा कर देते हैं, दूसरों से आलतू फालतू बोलते नहीं हैं, अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हैं, अपने को मनन चिंतन में बिजी कर देते हैं, मुरलियों के अच्छे अच्छे पॉइंट निकालते हैं, योग के छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, ड्रिल करते हैं, माना अपने को पूरा उस पुरुषार्थ में झोंक देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, शुरू शुरू में तो परम नाम दिखता है, फिर बाद में दिन में तारे दिखाई देते हैं। हाँ, वो बताया ना, पहले पहले तो जाते सेंटर में तो बहनें भी देवियां लगती हैं, भाई सब फरिश्ता रखते हैं, देवता रहते हैं, सबके प्रति हमारी मनोभावनाएं कितनी ऊंची होती है, क्योंकि जीवन में उसमें एकदम तुरंत रूहानी है, क्योंकि बाबा ने हाथ पकड़ा है तो सारी शक्तियां तो उसमें दे देता है। लेकिन जो हमको उससे शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो शक्तियों को हम धीरे धीरे दूसरों को देखने में नष्ट करते जाते हैं। बचपन से बाबा कहते ना, जन्म लेते मैं तुमको सारा अपना सब कुछ दे देता हूँ, सब कुछ लुटा देता हूँ, सारे वरदान दे देता हूँ, क्योंकि वो तो है ही हमारे लिए। लेकिन जो हमको उससे प्राप्त होता है, उनको धीरे 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 हम दूसरों को देखने में लगा देते हैं। जो उसमें हमको उन वरदानों पर काम करना चाहिए, जो 3 दिन पहले स्लोगन था, वरदाता बाप को अपना साथी बना लो तो क्या होगा, वरदानों से झोली भरती जाएगी। लेकिन होता क्या, साथी हम वरदाता को थोड़ा नहीं बनाते हैं, उसमें तो स्लोगन सुनने के, मुरली सुनने के, इसमें तो हमने बना लिया साथी। लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे साथी खड़े हैं हमारे, माया अनेक रूप से है, चाहे वो ब्राह्मणों के रूप में आएगी, नए नए रूप में आएगी, क्योंकि माया भी तो एक रूप से थोड़ी रहेगी। तो उसी तरह से इस ज्ञान मार्ग में कहीं ना कहीं हम अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को, जो हमको एक सौगात में मिले, गिफ्ट में मिले, बाबा ने उस दिन कहा ना, कस्तूरी की सौगात मिलती है तुमको, ज्ञान की कस्तूरी की सौगात। तो जो हमको इतनी ऊंची सौगातें मिलती हैं, उनका हम सदुपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में प्रगति नहीं हो पाती है। फिर कहीं ना कहीं हम ठहर जाते हैं, कहीं ना कहीं आकर्षणों में बंध जाते हैं, अधीनता में आ जाते हैं। तो तीसरी बात, एकांत में जाके अपने आप को देखना है, जांचना परखना है, सेल्फ जो इंस्पेक्शन है, अपना निरीक्षण करना है कि कहाँ कहाँ भूल हो रही है, कहाँ कहाँ हमारा लीकेज है, उसको रोकना है। अगर हम लीकेज को रोकेंगे तो बाद में हमारे हाथ में हमको खुद ही पछताना पड़ेगा, पछतावे के सिवाय कुछ करना नहीं, फिर कर ही नहीं सकते हैं। तो चौथी बात ये एकांत प्रिय, पहली बात सोल कॉन्शियस, फिर सुप्री सोल कॉन्शियस, साइलेंस और एकांत प्रिय। फिर नेक्स्ट है, क्योंकि हम सेवा क्षेत्र में रहते, बाबा कहते तुम युद्ध के मैदान में, रूहानी युद्ध है, तो हमको बहुत सारी बातें देखने को आएंगी जो हमारे गति को रोक देंगी। तो कहीं ना कहीं हमको साक्षी भी होकर रहना है, हमको किसी में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि सबका हिसाब किताब अपना अपना है। अगर हम रुक जाते हैं तो हम नया हिसाब किताब क्रिएट कर लेते हैं, चाहे हम संबंधों के रूप में क्रिएट कर रहे हैं, चाहे हम किसी की बातों को पकड़ के अपने मन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या उसको समझाने में लगे हुए हैं जो हमारी समझने से समझेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम भगवान के समझाने पर ही नहीं समझ रहे हैं तो दूसरे हमको क्या समझाएंगे। तो कहीं ना कहीं साक्षी होके भी, क्योंकि पार्ट चल रहा है ड्रामा में, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज करने वाला तो ऊपर उसने सबको एक समान रास्ता दिखाया हुआ है। उसी तरह इस संसार में भी, पुरुषार्थ के संसार में भी हमें साक्षी अवस्था का बहुत अभ्यास चाहिए, है ना। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता जा रहा है तो परिवर्तन भी हमको दिखाई देते जा रहे हैं, क्योंकि यज्ञ उसका है, चिंता उसको है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने विचारों को थोपने शुरू कर देते हैं कि ऐसे नहीं होने चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, या अपनी कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ समझ लेते हैं कि हमारा भी कुछ मानना चाहिए, तो हम साक्षी अवस्था को उसमें भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, मालिक होकर अपना वाले राय दो, लेकिन बालक होकर स्वीकार कर लो। संडे की मुरली में था मालिक और बालक, कर्ण करावनहार, कर्म करते समय मालक को साथ रखो, है ना, और बालक बनकर कर्म करते रहो। तो साक्षी अवस्था का भी अभ्यास हमारे जीवन में रहता रहना चाहिए, तभी हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है, जो भी हमारे बॉडी कॉन्शियस की बातें हैं, अगर हमको उनसे मुक्त होना है तो अपने आचरण पर, बोल पर, स्पीच पर भी हमको बहुत नियंत्रण, जितना हम अपने, जैसे बताया ना, कंट्रोल्ड स्पीच, ये एक डायमंड की तरह है, तो अपनी स्पीच भी पर भी कहाँ हमको क्या बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, धीरे धीरे वो भी हमको थोड़ा अटेंशन रखने की ज़रूरत है और वो सीखने की ज़रूरत है। अगर हमको कोई इशारा दे तो हमको वो इशारे को स्वीकार कर लेना है, ताकि वो वास्तव में हमारे फायदे के लिए ही है। वो शिवचिंतक है हमारा, वेल विशर है, कल बताया था ना, वेल विशर है वो। तो हमको देखना, कंट्रोल स्पीच चाहिए हमको। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ जी, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं अपना अपने रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं, अर्थात सम्मान, जो हमको बाबा इतने ऊँचे ऊँचे टाइटल देते हैं। आज था ना योग्य शिक्षक, आज ही है, कल की मुरली में था वरदान में, तो योग्य शिक्षक वास्तव में हम सब हैं जी, कल था, तो वास्तव में हम सब चलते फिरते शिक्षक हैं। हर ब्राह्मण आत्मा शिक्षक है, ना केवल हम अपने आप को पाठ पढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे से कई पाठ दूसरे पढ़ रहे हैं, चाहे वो उल्टा पाठ पढ़ रहे हैं चाहे सीधा पढ़ रहे हैं, देख तो रहे हैं, हम सबको सब देख रहे हैं, है ना, हर तरफ से, ऊपर से भी कैमरा लगा, भगवान हमको निरंतर देख रहा है, मालिक तो देख रहा है, जिसने अपने बालकों को इस संसार में भेजा हुआ कर्म करने के लिए, तो उस मालिक की निगाह तो हमारे ऊपर निरंतर रहेगी ही नहीं रहेगी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, अर्थात जो उसने हमको इतने बड़े बड़े टाइटल दिए हैं, सम्मान दिए हैं, कहाँ तक हम सम्मान में स्थित रहते हैं, कहाँ तक उसका हम पालन करते हैं। अगर हम सम्मान में स्थित नहीं रहते, जैसे ये भी भगवान का एक निरादर है, उसकी शिक्षाओं का निरादर है, अर्थात हम उसकी श्रीमत का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उसको स्मृति में नहीं रखा है। तो जो भी हमको सम्मान मिलते हैं, उस पर थोड़ा चिंतन करना है, गहराई से उस पर थोड़ा ठहरना है, और उसको सम्मान को लंबे समय तक अपनी बुद्धि में चिंतन करते हुए खींचना है, ताकि उसका रस मिले। बाबा कहते ना, भोजन हजम होता है तभी उसका खून बनता है। अगर हम ज्ञान को हजम नहीं करेंगे तो खून कैसे बनेगा, शक्ति कैसे आएगी, कमजोर रहेगी आत्मा। तो ज्ञान तो जैसे आत्मा के लिए खुराक है, एक चोप चीनी है, तो इसलिए लंबे समय से इसका चिंतन करना है। जितना हम चिंतनशील बनेंगे तो उतना हमारी सब प्रकार की जो चिंताएं हैं सूक्ष्म रूप से, चाहे वो अपने पुरुषार्थ के प्रति है या कर्म क्षेत्र पर अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, वो स्वतः सुलझती जाएंगी। जो चिंतनशील बनना भी अनिवार्य है, चिंतनशील बनेंगे तो सम्मान का हम सुख ले पाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट। और जितना हम स्वयं की रिस्पेक्ट करेंगे, उतना दूसरों की रिस्पेक्ट करने के लिए भी हम सशक्त बन जाएंगे। और नेक्स्ट है साकाश। अगर हम अपने रूहानियत को बढ़ाना है तो स्वयं को साकाश लंबे समय तक देना है। दूसरों को साकाश तो हम दे देते हैं, लेकिन स्वयं को साकाश कहीं ना कहीं हम कम देते हैं। इसलिए जब भी हम सारे दिन में खाली होते हैं, अमृत वेले नुमा शाम, जब भी, तो अपने आप को भी साकाश देना है, शक्तिशाली साकाश देना है, ताकि उस साकाश से हमारी कमी कमजोरियां खत्म हो जाए, हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट हैं, जो इम्प्योरिटी के थॉट हैं, जो कहीं नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के हैं, तो सारी कर्मेंद्रियां जैसे बाबा कहते शीतल हो जाए। कैसे होंगी वो? साकाश देने से, अशरीरीपन की अवस्था। बाबा कहते हैं ना, जो पहला ही हमारा मूल मंत्र क्या है, कि अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करना, तो उस याद की यात्रा से ही स्वयं को साकाश देना है और फील करना है, जैसे वो सारा करंट मेरे अंदर समाता जा रहा है, और बहुत तीव्र गति से जैसे परिवर्तन महसूस करना है, स्पर्श करना है बाबा की किरणों को, बाबा की जैसे साकाश को, उस लाइट को स्पर्श, जैसे वो टच कर रहा है, मेरे कर्मेंद्रियों से टच कर रहा है, चाहे वो दृष्टि है, वृत्ति है, कृति है, हाथों से जो हम कर्म करते हैं, तो सारी कर्मेंद्रियों को परमात्मा साकाश जैसे टच कर रहा है, और सारी कर्मेंद्रियां शांत चित्र होती जा रही हैं, और उसका परिणाम हम देखेंगे कि कर्मेंद्रियों पर धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगा, और जब हम कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण कर लेंगे तो जो बाबा कहते हैं जितना समय चाहो जहां चाहो अपने मन को टिका सकते हो। जब हम अपने कर्मचारियों के अधीन रहेंगे तो ऊपर कैसे उड़ेंगे। कल था ना आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो, किस लिए, कल किस स्लोगन में था, शक्तिशाली बनने के लिए। हाँ और कुछ था, शक्तिशाली बनना है तो आत्मशक्ति की उड़ान नहीं, कुछ और है वो रूहानी, वो है संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। तो उड़ान भरेंगे कब, जब पहले कर्मचारियों से हम, जो हमारे कर्मचारियों से लगाव हो गया उनसे निकलेंगे, तो अपनी कर्मेंद्रियों को भी शांत शीतल कर देना। नहीं तो जब उत्पात मचाएगी तो कौन जाने देगा अपने को आगे। जो व्यक्ति घर में शांत शीतल बैठा है वो तो हमको घर से बाहर निकलने देगा ना। अगर घर में सारे बच्चे उत्पात मचा रहे तो माँ को बाहर निकलने देते हैं, वो जाने देते कहीं, नहीं जाने देते ना। उसी तरह हमारी कर्मेंद्रियाँ भी अगर उत्पात मचा रही हैं तो आत्मशक्ति की उड़ान कैसे भरेंगे। तो लंबे समय से अपने को साकाश देने की भी साधना करनी है। स्वयं के प्रति कहीं ना कहीं हम रहम दिल कम बनते हैं, दूसरों के प्रति तो रहम दिल बनना आसान है, सहानुभूति रखना आसान है, लेकिन स्वयं के प्रति सहानुभूति रखना ये थोड़ा टेढ़ी कीर हो जाती है ना। तो ये देखना है कि स्वयं को साकाश देने का भी हमारा निरंतर पुरुषार्थ चलता रहे, प्रयासरत रहे। नेक्स्ट है बाबा कहते जो आज सवेरे बाबा ने बताया पांच स्वरूपों की ड्रिल, वो वास्तव में बहुत मायने रखती है इस बॉडी से डिटैच होने के लिए। तो हाँ जी, हाँ आज था पांच मुखी ब्रह्मा, तो उसके साथ बाबा ने जो पांच स्वरूपों की ड्रिल जोड़ी, परम धाम में देखो अपने आप को कितना, और वास्तव में वो तो हमारा घर है ना। तो सूक्ष्म बताने, हाँ बाबा कहते आज की मुरली में ना अगर बिंदी छोटी है तो बड़ी बिंदी याद करो, बाप के नहीं तो घर को याद करो, कुछ तो करा करते रहो तो करते रहना पड़ेगा जी, घर में बाप बैठा है। तो ये हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के अनेक युक्तियां हैं, लेकिन उन युक्तियों को अगर स्मृति में रखेंगे तो ही हमारे जीवन में बदलाव आएगा, नहीं तो बदलाव की गति बहुत धीमी होगी, और धीमी गति होगी तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, संतुष्टता नहीं होगी। इसलिए ड्रिल भी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जितना हम उसको करते हैं हम खुद तंदुरुस्त रहते हैं। जैसे बाबा डॉक्टर की मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि डॉक्टर क्या बताते हैं, मोटापे को कम करने के लिए एक्सरसाइज करो। तो हमारे अंदर भी तो मोटापा बहुत हो गया ना, नेगेटिव संकल्पों का, अव्यर्थ संकल्पों का, परदर्शन, परचिंतन, दूसरे के दोष देखना, ये सब हमारे जैसे आत्मा को मोटा कर दिया इन्होंने। जैसे देह अभिमान के सारे जो संकल्प हैं, शरीर के जो सारे संकल्प हैं, आत्मा के अंदर घुस गए, जैसे शरीर ही आत्मा के अंदर घुस गया हुआ है। वैसे तो आत्मा शरीर में है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है, शरीर आत्मा में घुस गया हुआ है। क्योंकि हम योग में बैठे बैठे क्या चिंतन चलता, कई बार शरीर के बारे में तो चल रहा है, तो शरीर अंदर घुस गया हुआ है, तो आत्मा के जो संकल्प है वो तो हमने डाले नहीं अंदर है। तो ड्रिल करने से हम हल्के होंगे, तंदुरुस्त होंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ान भरते रहेंगे, खुश होंगे, और निरंतर हमारी प्रगति होती रहेगी। तो ये कुछ एक बातें थी। तो इस रूहानी सफर को, रूहानी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, रूहानियत को आगे बढ़ाने के लिए, रूहानियत की महसूसता करने के लिए हमें स्वयं पर ही अटेंशन रखने की जरूरत है। नहीं तो इस ब्राह्मण में चलते 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 पाँव कहाँ खिसक जाता है, बाबा ने कहा था ना खड्डे में चले जाते हैं, थोड़ा सा भी भूलते हैं तो खड्डे में चले जाते हैं, माया तो खड़ी है अलग अलग रूपों से। तो स्वयं पर ही अटेंशन रखना है। तो कितनी बातें देखी हमने, सबसे पहले सोल कॉन्शियस स्थिति को बढ़ाना है, और इससे फायदे हमको बहुत होंगे, हमारा समय सारा सफल होगा, और ना केवल हम हल्के रहेंगे बल्कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी हल्के बनाएंगे, और दूसरों को भी हल्का बनाने के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, और वो वास्तव में दूसरे हमारे से खुद ही महसूस करते हैं, बोलने से नहीं होते, चेहरा देख के पता चल जाता है कि हम भारी हैं या हल्के हैं अंदर से। तो उसमें फायदे फायदे हैं बहुत। तो पहली बात है सोल कॉन्शियस स्थिति को हमको बढ़ाते जाना है, और हमारा ये फाउंडेशन है, ब्राह्मण जीवन का ये फाउंडेशन है, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का ये फाउंडेशन है, आधार है, आधारशिला है। तो सोल कॉन्शियस स्थिति को हमको निरंतर, और उस स्थिति में हमारे मन में किसी के प्रति भी नेगेटिव भावनाएं जो है ना वो सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो स्थिति हमको सबको भाई भाई की वृत्ति का अनुभव कराएगी, अपने परिवार का कराएगी, भले कोई कैसा भी है, किसी ने भी हमको कुछ भी कैसा कहा, लेकिन हमने देखा अगर जितना हम इस स्थिति को आगे बढ़ाते जाते हैं तो किसी के प्रति हमारी नेगेटिव भावनाएं रहती है, भले हमको कोई कुछ भी कह रहा है, पता है ये सारा व्यर्थ ही कह रहा है,
ये हमें चिढ़ाने के लिए कह रहा है या कुछ भी कह रहा है, लेकिन हमको वो फिर बातें फीलिंग में नहीं आएंगी। अगर उसमें आएंगे भी तो फुल स्टॉप लगाने की ताकत आ जाएगी, जो बाबा कहते हैं सेकंड में फुल स्टॉप लगा लो। तो सोल कॉन्शियस स्थिति का आत्म अन्य स्थिति को हम निरंतर बढ़ाते रहें, उससे हमारा भी फायदा है, वातावरण भी शक्तिशाली बनेगा और दूसरों का भी फायदा है, दूसरों को भी हम उसकी अनुभूति करा सकते हैं। और दूसरी बात है सुप्रीम सोल कॉन्शियस अर्थात निरंतर परमात्म अभिमानी, किस न किस रूप से हमें उसकी स्मृति बनी रहे, हमें उससे क्या क्या प्राप्ति हुई है, उसका हाथ हमने क्यों पकड़ा है, क्यों हम रोज रोज उठ के उसको याद कर रहे हैं। कुछ तो है ना, कुछ तो हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ ना, कुछ तो हमने स्वाद चखा ना, तो उसका हमारे ऊपर प्यार है और हमारा भी उससे प्यार है। तो परमात्म अभिमानी स्थिति भी हमको ये निरंतर बढ़ाते जाना है। अगर उस हमने उसका हाथ पकड़ा है, उसके हम गोद में पल रहे हैं, लंबे समय से साधना कर रहे हैं, अपने आप को देखना कि कैसे हमारे इतने जटिल या कुटिल संस्कार थे जिन संस्कारों से हम मुक्त नहीं हो पा रहे थे, और बाबा की शक्ति से, बाबा की कृपा से, उसके आशीर्वाद से कैसे हम उन संस्कारों से मुक्त हो गए। तो उन पलों को भी याद करना है जो बीते हुए पल हैं, उससे भी हमारे जीवन की रूहानियत निरंतर बढ़ती जाएगी। नहीं तो कहीं ना कहीं हम प्राप्तियों को भूल जाते हैं और हद की प्राप्तियों के पीछे हमारी भागदौड़ चालू हो जाती है। तो हमको ये सुप्रीम सोल कॉन्शियस स्थिति को भी बढ़ाते जाना है। तीसरी बात बताई साइलेंस, साइलेंस में रहना है और साथ में कंट्रोल्ड स्पीच, जो बोलना है हमको नपतुले बोली बोलने हैं। नहीं तो हम खुद ही देखते हैं जैसे जैसे बिना मतलब के कई सारे बोल तो निकल ही जाते हैं, लेकिन जब से हमको थोड़ा अटेंशन रहता है, बहुत सारे बोल ऐसे होते हैं जो इस ज्ञान मार्ग के नहीं है, जैसे यहाँ गुरु चेले की परंपरा नहीं है तो लोग ऐसे बोलते हैं आप सब चेले हो, कुछ ना किसी ना किसी अर्थात जिसके साथ हम रहते हैं ना तो बोलते हैं इसके चेले हो, तो ये सारे हमारे या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ज्ञान मार्ग के हैं ही नहीं है। वो माना अपने मन के ऊपर भी, हमारे अपने मुख के ऊपर भी लगाम नहीं है अभी तक भी, ऐसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं मुख से। हाँ जी, युगल भी बोलते हैं, आप युगल बोलते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि हमारे ब्राह्मण डिक्शनरी है ही नहीं, वो तो सब भक्ति मार्ग हैं। यहां तक कि बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं आपका गुरु थोड़ा नहीं हूं। हाँ, किसी की क्लास सुनो तो उसके लिए कह देते हैं। तो ये है कि ये तो हमको जीवन में मिलेगा है ना। अभी आपको एक चीज बताते हैं, जैसे कुर्सियों पर क्या लिखा हुआ, SP लिखा है ना, माना सेल्फ प्रोग्रेस, निशानी लिखी है संभालने के लिए, तो है नी SPG, तो पेशेंट ग्रुप लिख दिया, किसी ने बताया पेशेंट ग्रुप है सारा प्रोग्रेस ग्रुप की बजाय पेशेंट ग्रुप, तो वो चिंतन चल रहा है और अच्छा चिंतन नहीं चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे। वो सारे देह अभिमान के संकल्पों के अंदर ही उनका मन बुद्धि घूम रहा है, सोल कॉन्शियस नहीं है। तो जब ऐसे संकल्प बने तो उनको रूहानियत कैसे बढ़ेगी जीवन में, तो हम कैसे लिंक रखें, क्योंकि संसार के संकल्पों को हमने छोड़ा ही नहीं, तो उनको छोड़ा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कंट्रोल स्पीच। नेक्स्ट है साक्षी अवस्था। तो साक्षी अवस्था का भी हमको अभ्यास करना है, किसी को देख के हमको ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। तो हमको ये देख साक्षी अवस्था की सीट पर सेट रहकर नेक्स्ट अपने को साकाश देना है निरंतर। अगर हम अपने आप को साकाश देंगे और खुद को हम निर्बंधन बनाते जाएंगे उस आकाश से, बहुत सारी जो सूक्ष्म रस्सियां हैं हमारे मन को बंधी हुई हैं, उन रस्सियों से मुक्त होते जाएंगे, तो निरंतर हम खुद जब स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, दूसरे भी स्वतंत्र हो जाएंगे। और नेक्स्ट है साइलेंस। साइलेंस तो हो गया पहले, सॉलिट्यूड एकांत और सेल्फ रेस्पेक्ट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जो भी आकर्षण है, अटैचमेंट है सूक्ष्म रूप से, तो उन सबसे छूटने के लिए स्वयं अगर थोड़ा अटेंशन रखेंगे तो निरंतर हमारे जीवन में जो आध्यात्मिकता है, रूहानियत है, वो बढ़ती जाएगी और हम उसका स्वाद, उसका टेस्ट निरंतर अनुभव करते रहेंगे और हमेशा आत्मिक शक्ति की उड़ान भरते रहेंगे। ओम शांति।
सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर, धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल, तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते, पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा।